तत उपहारत्य वृद्धि हृदयाच्छनेर्बुदः यतो यतो निश्यति मनःकामहतं ब्रह्म ततस्तत उपहारत्य वृद्धि हृदयाच्छनेर्बुदः यतो यतो निसरति मनःकामहतं ब्रह्म ततस्तत उपहृत्य वृद्धि हृदयाचनेर्बुदः यतो यतो निसरति मनःकामहतं ब्रह्म यतो यतो निसरति मनःकामहतं ब्रह्म ततस्तत उपहृत्य वृद्धि हृदयाच्छनेर्बुदः यतो यतो निसरति मनःकामहतं ब्रह्म ततस्तथा उपहृत्य वृद्धि हृदयाच्छनेर्बुदः यतो यतो निसरति मनःकामहतं ब्रह्म ततस्तत उपहृत्य वृद्धि हृदयाच्छनेर्बुदः शब्दार्थ दोनों श्लोकों का शब्दार्थ। अच्छा, थोड़ा आगे आ जाएंगे तो जो पीछे आ रहे हैं उनको ढूंढना पड़ रहा है जगह। थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे जगह छोड़ दीजिए। दोनों प्रभु जी माता जी प्राण अंदर जाने वाली श्वास अपानो बाहर निकलने वाली श्वास सन्निरुद्ध्या रोके रहे पूरा कुंभक रह चके श्वास अंदर खींचना बाहर निकालना तथा रोकना इन तीनों को क्रमश पूरक कुंभक तथा रेचक कहा जाता है। यावत जब तक मना मन त्यजेत छोड़ दे कामान समस्त भौतिक इच्छाएं स्व अपनी नासग्र नाक का अप्रभाग निरीक्षण देखना यता यता जहाँ कहीं से जो कुछ नियसरती निकलती है मना मन काम हतम कामेच्छाओं से पराजित होकर भ्रमत घूमते हुए तथा तथा वहाँ वहाँ से पात्य वापस लाकर यदि हृदय के अंदर उन्ध्यात रोके मन को शने अभ्यास से धीरे धीरे बुध विद्वान योगी। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। अनुवाद विद्वान योगी अपनी नाक के अग्रभाग पर निरंतर दृष्टि लगाकर पूरक कुंभक तथा रेचक नामक श्वास लेने के आसन का, अर्थात वह श्वास अंदर ले जाने, बाहर निकालने और फिर दोनों को रोक देने का अभ्यास करता है। इस प्रकार योगी अपने मन को भौतिक आसक्तियों से रोकता है और संपूर्ण मानसिक इच्छाएं त्याग देता है। ज्यों ही मन कामेच्छाओं के वशीभूत होकर इंद्र तृप्ति की भावनाओं की ओर हटे, त्यों ही योगी को उसे तुरंत वापस लाकर हृदय के अंदर बांध लेना चाहिए। तात्पर्य, यहाँ पर योग अभ्यास का संक्षिप्त वर्णन हुआ है। जब यह योग अभ्यास परिपूर्ण होता है तो योगी को अपने हृदय के अंदर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के परमात्मा स्वरूप का दर्शन होता है। किंतु श्रीमद् भगवद गीता 6:47 में श्री भगवान कहते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतरात्मना श्रद्धामान भजते यो माम समे युक्ततो ममतः। योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मुझ में अटल हो जाता है और दिव्य प्रेमा भक्ति से मेरी पूजा करता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक बंध जाता है और वह सर्वश्रेष्ठ है। भक्त तुरंत ही पूर्ण योगी बन सकता है क्योंकि वह अपने हृदय में सदैव भगवान श्री कृष्ण को धारण करते हुए अभ्यास करता है। योग अभ्यास की अन्य विधि, श्री भगवान कहते हैं, मनमना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। श्रीमद् भगवद गीता 18:65। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण को सदा अपने हृदय में धारण करके मनमना भक्ति करता है तो वह तुरंत उच्च कोटि का योगी बन जाता है। यूं कहा जाए, भगवान श्री कृष्ण को मन के अंदर रखना भक्त हेतु कोई कठिन कार्य नहीं है। देहात्म बुद्धि के सामान्य मनुष्य हेतु तो योग अभ्यास सहायक सिद्ध हो सकता है, किंतु जो तुरंत ही भक्ति करने लगता है वह किन्हीं बिना किसी कठिनाई के तुरंत पूर्ण योगी बन जाता है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकय चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादाति गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो श्री वृंदावन धाम में श्रीमद् भागवतम कक्षा में मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत आनंद है आप लोगों के साथ मिलकर। हम चर्चा कर रहे हैं 7वें स्कंद का ये अध्याय। ये कुछ अध्याय में श्री नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं। श्री नारद मुनि भी महाजन हैं, युधिष्ठिर महाराज भी महाजन हैं, दोनों महान शुद्ध भक्त हैं और नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं इस अध्याय में कि जो सिविलाइज्ड, जो सभ्य मनुष्य है, सभ्य ब्राह्मण सन्यासी गृहस्थ, उनको कैसे अपने जीवन में व्यवहार करना चाहिए। थोड़ा और जगह दीजिए पीछे, थोड़ा और टाइट हो जाइए, भक्त लोग खड़े हैं दरवाजे पे, थोड़ा आ जाइए आगे आगे, मूव मूव। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता में हम सीखते हैं कि हर व्यक्ति एक शुद्ध आत्मा है, भगवान कृष्ण का अंश होने के नाते हम भी पवित्र हैं, जैसे कृष्ण पवित्रम प्योरेस्ट ऑफ ऑल प्योर पवित्र है। कृष्ण सच्चित आनंद है और आत्मा भी सच्चित आनंद है, मगर किसी कारणवश कोई आत्मा इस भौतिक दुनिया में आ जाते हैं, पतन हो जाता है। तो जब भौतिक दुनिया में आते हैं तो आत्मा का जो चेतना है वो दूषित हो जाता है। जैसे बादल में जो पानी होता है वो शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही बारिश के रूप में नीचे धरती पर छूता है वो कीचड़ हो जाता है, मिट्टी में मिक्स हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, उसको उठा के पी नहीं सकते आप, लेकिन ऊपर से डायरेक्ट कैच करके पी सकते हो आप। तो उसी तरह आध्यात्मिक दुनिया में आत्मा शुद्ध है, लेकिन नीचे आता है तो उसका चेतना कीचड़ हो जाता है। किससे मिक्स होता है? रजोगुण और तमोगुण से मिक्स होता है। रजोगुण और तमोगुण के संपर्क में आकर हमारा कृष्ण प्रेम काम में परिवर्तन होता है और हम स्वार्थी बन जाते हैं, और कृष्ण को प्रसन्न करने के बजाय खुद को प्रसन्न करने के लिए मेहनत करते हैं। तो अभी जब हम ये समझ जाते हैं कि हम अशुद्ध हो चुके हैं, अपना घर छोड़कर आए हैं, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को वापस जाना चाहिए अपने घर, लेकिन वापस जाने के पहले चेतना को शुद्ध करना है। अशुद्ध चेतना से नहीं जा सकते, गोलोक वृंदावन में स्मगलिंग अलाउड नहीं है। तो हमें अपने आप को शुद्ध करना है। तो शुद्ध करने के लिए तरीके हैं मनुष्य जीवन में, उसमें से एक तरीका इधर नारद मुनि बता रहे हैं अष्टांग योग का, जिसके पिछले श्लोकों में भी नारद मुनि बताते हैं कि कैसे एक व्यक्ति को जंगल में जाना चाहिए, साफ आसन पे बैठना चाहिए, एकदम स्पाइन सीधा रखना चाहिए, न ज्यादा नीचे न ज्यादा ऊपर, बहुत कुछ नियम है। तो ये सब लोग कर नहीं सकते, योग अभ्यास, ध्यान योग अभ्यास। कोई कोई कहते हैं प्रभु जी हम तो रोज 15 मिनट ध्यान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा कैसे करते हो? तो तुरंत नींद से उठते ही कुछ नहीं करते, पहला चीज करते हैं उसी बिस्तर पे बैठ जाते हैं आंख बंद करके, 15 मिनट बहुत अच्छा लगता है। अरे अगर आप नींद से उठकर उसी बिस्तर पे आंख बंद करके वापस बैठोगे 15 मिनट तो क्या होगा? वापस नींद आ जाएगी, वापस नींद आ जाएगी तो सबको अच्छा लगता है दोबारा नींद करना, उसको थोड़ी ध्यान कहते हो। ध्यान तो जंगल में जाकर होता है, डिस्ट्रैक्शन फ्री। तो नारद मुनि जो बता रहे हैं 5000 साल पहले वैसा ध्यान प्रचलित था, जिसमें प्राणायाम है कि श्वास बाहर छोड़ो, अंदर श्वास अंदर लो, रोको और बाहर छोड़ो। इसे सच में जो पूरे नियम के साथ करता है उसका भौतिक आसक्ति कम होता है, उसका भौतिक इच्छा कम होता है। और यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भी बताया कि आप ध्यान करो। अर्जुन ने क्या कहा? नो, मैं नहीं कर सकता, मेरा मन बहुत चंचल है, ये ध्यान प्रैक्टिकल नहीं है, मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं नहीं कर सकता। 5000 साल पहले भगवान कृष्ण ने डायरेक्ट अर्जुन को कहा ध्यान करो, और अर्जुन ने कहा कि ये संभव नहीं है हमारे लिए। आज 5000 साल बाद हमारे लिए संभव है? नहीं संभव है। इधर मंदिर बनाने के बदले जंगल ही रहता था, और सबको इनवाइट किए जाते थे कि आओ ध्यान करो 8 घंटा पेड़ के नीचे। इतने भीड़ होता था इधर, कोई नहीं होता था, ये संभव नहीं है। इसलिए भगवद गीता में अर्जुन को ध्यान के उपदेश के बाद भी भगवान आखिरी श्लोक में भक्ति का हिंट देते हैं, योगिनाम अपि सर्वेशाम, कि सब योगियों में महान योगी कौन है? जो श्रद्धा से मेरी पूजा करता है। तो भक्ति करते हैं तो उसका बीज है श्रद्धा, भेद श्रद्धा होना चाहिए। जैसे एक बार एक गांव में बारिश नहीं हुआ 2-3 साल, तो इतना सूखा पड़ गया कि जानवर मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, और बहुत सारे गांव वाले गांव छोड़कर कहीं और चले गए कि कैसे रहेंगे बिना पानी के। तो जो बचे हुए गांव वाले थे वो सोच रहे थे कि अगर इस साल भी वर्षा नहीं हुआ तो ये गांव उजड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमें कुछ उपाय करना चाहिए। तो जंगल में एक साधु बाबा थे, बोले चलो बाबा के पास जाते हैं। तो गांव वाले गए बाबा के पास और अपना समस्या बताया कि हमारे गांव में 3-4 साल से वर्षा नहीं हुआ, आप कुछ उपाय बताइए, नहीं तो पूरा गांव उजड़ जाएगा, ऑलरेडी जानवर बच्चे मर गए, लोग छोड़ के चले गए। तो बाबा ने कहा कि कल सुबह 5 बजे आप सब लोग विष्णु मंदिर में हाजिर हो जाओ, कोई नहीं छूटना चाहिए, सब लोग आओ और कीर्तन करो, सब लोग मिलकर कीर्तन करेंगे तो वर्षा होगी। ठीक है, और कुछ? बोला सब लोगों को कीर्तन पे विश्वास है, प्रार्थना पे विश्वास है, ऐसा एक वस्तु लेके आओ, विश्वास का वस्तु, आर्टिकल ऑफ फेथ। ठीक है, दूसरे दिन पूरा बचा हुआ जो भी गांव वाले थे जमा हो गए कीर्तन के लिए, प्रार्थना के लिए कि भगवान बारिश दो, और हर व्यक्ति एक वस्तु लेके आया, श्रद्धा का वस्तु, कोई भगवद गीता लेके आया, कोई तुलसी महारानी लेके आया, कोई कुरान लेके आया, कोई बाइबल लेके आया, कोई तिलक लेके आया, कोई रुद्राक्ष का माला लेके आया, हर व्यक्ति अलग अलग एक श्रद्धा का वस्तु लेके आया दिखाने के लिए कि मेरे को श्रद्धा है। 3-4 घंटे कीर्तन हुआ, प्रार्थना किया और वर्षा चालू हो गई, गांव में वर्षा आ गई, सब लोग खुश हो गए और मंदिर के बाहर आए तो एक लड़के ने छाता खोला, वो छाता लेके आया था, ये उसका श्रद्धा था। बारिश होएगा तो क्या चाहिए, भगवद गीता चाहिए क्या, छाता चाहिए, तो उसका श्रद्धा था बारिश होगा कीर्तन करने से तो क्या लगेगा, छाता, आर्टिकल ऑफ फेथ, ये श्रद्धा का वस्तु था उसका। कि भगवान को प्रार्थना करेंगे तो भगवान जरूर सुनेंगे, और असल में तो भगवान हमारे इच्छा से, हमारी जो इच्छा है वो हमारे कल्पना के भी ऊपर पूरी करते हैं। आपकी जो इच्छा है वो श्याम सुंदर को बताएंगे, श्रीमती राधा रानी को बताएंगे, तो जो आप सोच रहे हो उससे ज्यादा देंगे वो, ये उनका आशीर्वाद है, कृपा है, प्रेम है। जैसे एक बार एक लड़का बहुत मस्ती करता था, तो उसकी माँ ने कहा बेटा कल हम जा रहे हैं आपकी मौसी के घर, वहां पर मस्ती नहीं करना, क्योंकि माँ को मालूम है वहां पर मस्ती करेगा तो नाम माँ का खराब होगा, बहन दूसरे बहनों को बोलेगी ये पालती नहीं है बराबर। लड़का बहुत मस्ती वाला था, माँ ने वार्निंग दिया कि उधर मस्ती नहीं करना, तो लड़का बोला ठीक है। दूसरे दिन गई बहन, लड़मा गई बहन से मिलने के लिए, दोनों बहनें बातें कर रहे हैं, लड़का सोफा पे 2 घंटा चुपचाप बैठा है। तो मौसी ने सोचा कि ये ऐसे ही बैठा है, भूखा होगा, 2 घंटे हो गए। मौसी ने एक बड़ा डब्बा चॉकलेट का लाया, बोला बेटा चॉकलेट खाओ। लड़के ने कहा नहीं चाहिए। अभी लड़के का चॉकलेट फेवरेट था, बोला नहीं चाहिए। बोला बेटा भूख लगा होगा चॉकलेट खाओ, बोला नहीं चाहिए। बेटा बच्चों को तो चॉकलेट पसंद है खाओ, बोला नहीं चाहिए। बेटा मैं बोल रही हूं एक तो लो, नहीं चाहिए। 10 बार मौसी ने बोला नहीं लिया। इनका बातचीत चलता रहा। अभी बहनों का बात बंद होता है क्या? 3-4 घंटा हो गया। और जब बात बंद होता है तो कैसे बंद होता है मालूम है? ठीक है बाकी बातें फोन पे कर लेंगे। तो 4 घंटे बाद मीटिंग खत्म किया, गए दोनों। तो मौसी को बुरा लगा, मेरे घर पे आया कुछ खाया नहीं 4 घंटा। मौसी ने अपने हाथ से चॉकलेट उठाया मुट्ठी भर, उसके जेब में डाल दिया, बोला जाओ रास्ते पर खाना। रास्ते पर जब चल रहे हैं तो ये लड़का फास्ट फास्ट तेज तेज एक एक चॉकलेट खोलता है खाता है, खोलता है खाता है, खोलता है खाता है, फास्ट फास्ट। तो माँ हैरान हो गई, बोला ये कैसा व्यवहार तेरा, घर में तो रोज जिद करता है चॉकलेट चाहिए चॉकलेट चाहिए, फेवरेट है तेरा। मेरी बहन ने 20 बार बोला चॉकलेट ले चॉकलेट ले चॉकलेट ले, तूने लिया नहीं, ऐसा क्यों? लड़के ने कहा माँ मेरा हाथ छोटा है, मैं अपने हाथ से लेता था तो इतना ही आता, मैंने अपने हाथ से नहीं लिया तो मौसी ने अपने हाथ से लिया, देखो कितना आया। बुद्धिमान है ना लड़का। उसी तरह ये पूरा दुनिया एक चॉकलेट का घर है, डब्बा है। किसका है? श्याम सुंदर का। अगर आप अपने मेहनत से कुछ खींचने का प्रयास करोगे तो बहुत थोड़ा आएगा, क्योंकि आपका हाथ छोटा है। लेकिन आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे श्याम सुंदर के पास तो इतना सारा वो देंगे अपने हाथ से, क्योंकि उनका हाथ बड़ा है। और ऐसा हुआ है श्रीमद् भागवतम में। आपने सुना है कर्दम मुनि के बारे में? कर्दम मुनि ब्रह्मचारी हैं, जंगल में पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। न घर है न गाड़ी है न बैंक बैलेंस है न डिग्री है न नौकरी है न मोबाइल है न टूथब्रश है, कुछ नहीं, कपड़े भी नहीं, इतने पतले हो गए हड्डी हो गया, खाने के लिए भी नहीं। जब भगवान विष्णु गरुड़ पे आए उनको दर्शन देने के लिए तो भगवान विष्णु के आंखों से आंसू आ गए कि कितनी तपस्या कर रहा है, बिंदु सरोवर बन गए वो आंसू। तो प्रार्थना में कर्दम मुनि ने कहा कि मुझे एक सुटेबल पत्नी चाहिए विवाह करने के लिए। भगवान विष्णु ने कहा कि 2 दिन बाद इस पृथ्वी के महाराजा मनु महाराज सोने के रथ पे आएंगे अपनी सुंदर कन्या देवती के साथ और कन्यादान करेंगे, तुम स्वीकार कर लेना। अभी कोई भी पिता एक गरीब लड़के को अपना बेटी देता है? मनु महाराज पृथ्वी के राजा जंगल में जाकर एक गरीब ब्रह्मचारी जिसके पास कपड़ा भी नहीं है पहनने को, घर तो छोड़ो, अपना राजकुमारी कन्यादान करेंगे? लेकिन किया उन्होंने, कर्दम मुनि की इच्छा उनके कल्पना से भी दूर पूरा किया। और देवती कोई साधारण लड़की नहीं थी, बहुत सुंदर राजकुमारी थी। जब देवती 11-12 साल की थी तो अपने सहेलियों के साथ अपने महल के टेरेस पे बॉल के साथ खेल रही थी। लंबू ऊंचा स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग था और उसी समय ऊपर से एक प्राइवेट प्लेन जा रहा था जिसमें गंधर्व बैठा था। गंधर्व वो जो गंधर्व लोक में रहते हैं और स्वर्ग में गाने गाते बजाते हैं और अप्सराओं का डांस देखते हैं। तो गंधर्व वो हैं जो रोज अप्सराओं का नृत्य देखते हैं, सुंदर अप्सराओं का। वो गंधर्व जो रोज सुंदर अप्सराओं का नृत्य देखते हैं वो एरोप्लेन से नीचे देवती को देखा। देवती को देखते ही एरोप्लेन के फर्श पे बेहोश हो गया। जो रोज अप्सराओं को देखकर देवती को देखकर बेहोश होता है, देवती कितनी सुंदर होगी। और वो देवती प्राप्त हुई पत्नी के रूप में किसे? कर्दम मुनि को। क्यों? क्योंकि कर्दम मुनि ने भगवान को प्रार्थना किया। ये कर्दम मुनि अपना बायोडाटा किसी मैट्रिमोनियल साइट पे डालते थे तो देवती मिलती थी, वो चेक करती थी, अरे कर्दम मुनि। या घर घर जाते थे कि मुझे विवाह करना है, महल में पहुंचते थे। लेकिन जंगल में बैठ के विष्णु को प्रार्थना किया और वो देवती से होगा। तो श्रद्धा होना चाहिए। कैसी श्रद्धा? कि अगर मैं कृष्ण की सेवा करूं तो जीवन में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं कृष्ण की सेवा करूं तो सब इच्छाएं पूरी हो जाएगी, सब जरूरत पूरी हो जाएगी, पूरी सफलता मिल जाएगी, सब सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और कुछ नहीं करना है, बस कृष्ण की सेवा करना है। ये श्रद्धा होना चाहिए। श्रद्धा और प्रेम में क्या फर्क है? श्रद्धा और प्रेम एक ही चीज है। जो श्रद्धा है वो बीज है और जो प्रेम है वो फल है। श्रद्धा बीज के रूप में अभी है हमारे पास, उसको हम रोज पानी डालेंगे तो वो एक दिन कृष्ण प्रेम का फल देगा। श्रद्धा भक्ति लता बीज, भक्ति लता बनेगा फिर फल देगा। 100% फेथ इज इक्वल टू लव। जब श्रद्धा 100% हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो प्रेम बन जाता है। तो ये श्रद्धा को हमें अपने हृदय के फील्ड में खेती करना चाहिए, हृदय के बगीचे में डाल के उस पर पानी डालना चाहिए। वो पानी है श्रवणम कीर्तनम, साधना भक्ति। और साधना भक्ति से व्यक्ति को कृष्ण प्रेम मिल सकता है, मतलब कृष्ण प्रेम दे सकते हैं। साधना भक्ति से प्रसन्न होकर अपनी अहेतु की कृपा से वो कृष्ण प्रेम देते हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। मन मना भव, हमेशा मेरे बारे में सोचो। मद भक्तो, मेरी भक्ति करो। मद याजी, मेरी पूजा करो। माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो। मन मना भव, हमेशा मेरे बारे में सोचो, 24 घंटा मेरा चिंतन करो। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आसान बात नहीं है। कृष्ण का चिंतन करना आसान है, 24 घंटा करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मन काबू में नहीं रहता है 24 घंटा। इसको रागानुगा भक्ति कहते हैं, 24 घंटा कृष्ण का चिंतन कर पाए। जैसे उद्धव, गोपियां, उद्धव जब 5 साल के थे तो अपने घर के दरवाजे के किनारे बैठे थे, कृष्ण के बारे में चिंतन कर रहे थे, 5 साल का लड़का। और उनकी माता आई, बोला उद्धव बेटा आओ, नाश्ता तैयार है। और उद्धव गया, जब गया तब लंच का टाइम हो गया, पता ही नहीं चला उसको बैठे बैठे कि इतना टाइम हो गया, 6 घंटा हो गया। सोच रहा था कृष्ण के बारे में। मन मना भव, हमेशा कृष्ण का चिंतन। तो कृष्ण को मालूम है सब लोग ये नहीं करेंगे, कर नहीं पाएंगे, इसलिए नेक्स्ट ऑप्शन दिया, मद भक्तो, मेरी भक्ति करो। ये है साधना भक्ति, कि नियम के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार भक्ति करो। नियम क्या है? सुबह उठकर नहाओ, तिलक लगाओ, साफ कपड़े पहनो, मंगल आरती में भाग लो, नरसिंह आरती तुलसी आरती में भाग लो, 16 माला बैठकर माला के ऊपर भक्तों के साथ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका जप करो, हरे कृष्णा महामंत्र, श्रृंगार आरती, गुरु पूजा, भागवत क्लास, प्रसाद, 4 नियम, सेवा। ऐसा नियम के अनुसार जीना चाहिए। एक गंधर्व लोक में, बहुत मशहूर गंधर्व थे, उनका नाम था उपबरहन, उपबरहन। गंधर्व लोग में सभी गंधर्व सुंदर हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं। उनमें उपबरहन सेलिब्रिटी था, मतलब बहुत ज्यादा सुंदर था, बहुत अच्छा गाता था, बहुत अच्छा बजाता, सेलिब्रिटी था। तो हमेशा अच्छा कलरफुल कपड़े पहनता था, अच्छे गहने पहनता था, अच्छा माला पहनता था, पान चबाता था, बहुत हैंडसम दिखाई देता था। तो उसके बहुत सारे फैन फॉलोइंग थे जो उसको पसंद करते थे, और उसमें बहुत सारी सुंदर स्त्रियां थी हमेशा उसके आजू बाजू बातचीत करती थी, हंसती थी, मजाक करती थी। तो उपबरहन के मन में बहुत काम हो गया था स्त्रियों के संग में रहकर। तो एक दिन देवताओं ने एक प्रोग्राम किया, अखंड हरिनाम संकीर्तन, 24 घंटा हम कृष्ण का कीर्तन करेंगे, जिसको आजकल हम कीर्तन मेला कहते हैं, अखंड हरिनाम संकीर्तन, जो आपके मंदिर में रोज कीर्तन मेला होता है, राइट, रोज ही कीर्तन होता है 24 घंटा। तो प्रजापति जो थे सीनियर देवता, उन्होंने ये प्रोग्राम आयोजन किया कीर्तन मेला का, और उन्होंने उपबरहन को भी न्योता दिया कि आप भी आओ, थोड़ा कीर्तन करो, आप अच्छा गाते हो। तो उपबरहन आया एकदम फर्स्ट क्लास दिन चैक कपड़े पहन के, एकदम रंग बिरंगी, कहते हैं ना कुछ कीर्तन में आनंद आता है उनको, रंग बिरंगी कपड़े पहनते हैं और अच्छा माला, अच्छा गहना, और बहुत सारे स्त्रियों के साथ आया हंसती हंसी मजाक में, मजाक करते करते, और आके बैठा। वो स्त्रियां थोड़ा नजदीक बैठे स्टेज के हरी बोल करने के लिए, और वो स्त्रियों को खुश करने के लिए उपबरहन कृष्ण के कीर्तन के बजाय देवताओं का गाना गाने लगा, देवताओं को गुणगान करने लगा। तो प्रजापति लोग बहुत गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए कि ये तो अपराध है। पहला अपराध है कि एक कीर्तन कार्यक्रम में आया स्त्रियों के साथ। कीर्तन कार्यक्रम, सत्संग कार्यक्रम में जैसे हमारे मंदिर में एटिकेट है कि पति पत्नी भी आते हैं तो अलग अलग बैठते हैं, ये तो दूसरे के साथ आया, दूसरे स्त्रियों के साथ आया। और दूसरा बड़ा अपराध किया, कृष्ण का कीर्तन करने के बजाय, कृष्ण का गुणगान करने के बजाय देवताओं का गुणगान किया। कीर्तन जो शब्द है वो सिर्फ कृष्ण के लिए होता है, कृष्ण कीर्तन, और कोई देवी कीर्तन, शिव कीर्तन, ये गलत है। जयंती जो शब्द है वो सिर्फ कृष्ण के लिए होता है, श्री कृष्ण जयंती, बाकी जो भी जयंती हो गलत शब्द है, वो इस्तेमाल नहीं करना। भक्ति जो शब्द है सिर्फ कृष्ण के लिए होता है, देशभक्ति, ये गलत शब्द है, ये ठीक नहीं है। तो प्रजापति लोग क्रोध होकर उसको श्राप दे दिया कि तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम शूद्र परिवार में बहुत दुख में पैदा हो और पृथ्वी के ऊपर, और उसका पतन हो गया। वो शूद्र परिवार में पैदा हुआ, माँ थी, ये बच्चा था, और घर में कोई नहीं, पिता भी नहीं था, माँ को मालूम ही नहीं पिता कौन है, बहुत गरीब थी, घर घर जाकर काम करके अपने बेटे को पालती थी मुश्किल से। अभी उपबरहन शूद्र परिवार में आया छोटा, जब 5 साल का था तो 4 शुद्ध भक्त, भक्ति वेदांत था, माँ के पास आए, बोले अभी बारिश का समय है, चतुर्मास्य का समय है, हम यात्रा नहीं कर सकते, क्या 4 महीने आपके इधर रुक सकते हैं? माँ ने कहा ठीक है, रुक जाइए, अतिथि देवो भव। देखिए कल्चर कैसा है, अतिथि देवो भव, पहले तो लिखते थे घर के बाहर अतिथि देवो भव, अतिथि, तिथि मतलब तारीख, अतिथि जो बिना बता के आ जाए अचानक वो देवतुल्य। क्यों? क्योंकि जो बिना बता के आ गया उसके लिए तो कुकिंग किया नहीं है, बिना बता के आया, कुकिंग तो खुद के लिए किया है तो खुद का उसको देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा त्याग माना जाता है गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि हम कमाते ही खाने के लिए हैं, और अचानक अपना खाना किसी और को दे दे, पता नहीं उसको प्रेम करते हैं हम नहीं करते हैं, फिर भी देना है, अचानक आ गया अतिथि, या आधा आधा करना पड़ेगा अतिथि देवो भव। पहले ये होटल वगैरह नहीं होते थे गांव में, कोई यात्री एक गांव में